इवन अगर आप अपने बालों को सफेद होने से भी रोकना चाहते हैं तो खीरे का इस्तेमाल रेगुलर कीजिएगा। इसके अलावा दिमागी अमराज से तहफ़ मिलता है, यानी इसमें एक जुज जो है वो दिमाग की बेहतरीन सेहत में किरदार अदा करता है। खीरों में फॉस्फोरस पाया जाता है और इसकी कमी से दिमागी अमराज का खतरा बढ़ता है। इसे खाना दिमाग को तेज़ रखने के लिए तवज्जो का बायस बनता है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो भी खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इसमें कैलोरीज ना होने के बराबर होती हैं और ज़ाहिर है हमें फाइबर फूड मिलती है, ज़्यादा खाना खाने पे कंट्रोल होता है, मोटापे से जो निजात का अमल तेज़ हो जाएगा। ऑफ कोर्स खीरे में चिकनाई बिल्कुल नहीं होती, कैलोरीज भी इसमें ना होने के बराबर होती हैं, तो ये वेट कम करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खीरों में ऐसे जुज भी होते हैं जो कि कैंसर की रोकथाम में मदद देते हैं। खीरों में मौजूद एक जुज है जो कि कैंसर की खुलियात की रोकथाम यानी उनकी ग्रोथ में मदद, उनकी ग्रोथ को रोकने में मददगार होता है। ऑफ कोर्स इसमें फाइबर की मकदार बहुत होती है, पानी की मकदार बहुत होती है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है और डिहाइड्रेशन से भी तहफ़ देता है। यानी खीरे में तकरीबन 95% इसका, खीरे का 95% पानी पर मुश्तमल होता है और यकीनन ये खाने से सेहत पे असर अच्छा ही पड़ता है। जल्द मुलायम होती है, जल्द में जगमगाहट वापस आती है। इसमें बी विटामिन्स, सी विटामिन सी, जिंक जैसे अज्जा की मौजूदगी, ये भी हमारी जल्द की सेहत को बेहतर करने में मददगार साबित होती है। इसमें एक होता है कैफेसिक एसिड होता है जो कि ख़ारिश और वर्म से लड़ना मुमकिन हो जाता है, हमारी शरियानों की सेहत को बेहतर करने में, क्योंकि खीरे में पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है और विटामिन्स भी होते हैं और ये तीनों खून की शरियानों के अफाल को मामूल रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कैल्शियम की सतह को रेगुलेट करता है, मैग्नीशियम पोटाशियम से हाई ब्लड प्रेशर से निजात मिलती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी बॉडी से यानी जिगर और मैदे से जहरीले मवाद के अखराज में मदद करते हैं। ऑफ कोर्स खीरा खाने से हमारा मेटाबॉलिक जो एसिड मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें फ्लोराइड्स मौजूद होते हैं और ये हमारे दांतों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम भी मौजूद होता है जो कि दांतों की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। तो साहब इसका मकसद क्या हुआ कि खीरा, और मेरा ख्याल है इन दिनों में तो बहुत से लोगों ने अपने घरों में भी खीरे लगाए होंगे, मैंने भी कितनी बेलें लगाई हैं खीरों की, कम अज़ कम 8 बेलें, और कुछ लगाया ही नहीं लगाया, मगर मेरी खीरे की बेलें बहुत अच्छी चल रही हैं,
निकलते भी बहुत हैं उसमें, एक एक
या बस मैंने मार्केट को मैंने ही सप्लाई करनी
है। आप तो बस बिजनेस कर लें,
बस ये अब खीरों का बिजनेस करना है।
हाँ, खीरों का बिजनेस करना है, गर्मियों के जमाने
यही रह गया।
नहीं नहीं, खीरों का बिजनेस बड़ा अच्छा बिजनेस।
फ्रांस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की बहन के खिलाफ ट्रायल का आगाज हो गया। आप उस दिन बल्कि शेयर भी कर रहे थे। अब देखिएगा कि जो डिक्टेटर फैमिलीज होती हैं, यानी वो लड़की कितनी जालिम थी कि वो जो पेंट करने आया था उसने सिर्फ वहाँ की तस्वीरें, रेनोवेशन कर रहा था इसके इस घर की, और उसने सिर्फ तस्वीरें उतारी थी, मारा पीटा उसके महाफज ने, और उसके बाद उसने उसे कहा कि ये कुत्ता है, इसको जीने का कोई हक नहीं है। तो ये सब कुछ हुआ और अब फ्रांस में ट्रायल का आगाज हो गया और ये सितंबर 2016 में सिर्फ इनकी रिहाइशगाह पर तस्वीर लेते इसको देखा गया था। बहरहाल मोहम्मद बिन सुलेमान की बहन तो इसे इन इल्ज़ाम को मुस्तरद करती है, मगर भाई ने भी देखिए जमाल खाशकजी का कत्ल कर दिया, इंटरनेशनल अक्वाम मुत्तहिदा कुछ भी नहीं कर सका, आपकी अमेरिका की जो कांग्रेस है वो बड़ा कुछ कह रही है इसके बारे में, कोई भी कुछ नहीं कर सका। तो बहरहाल कारीगर कहता है कि मेरे हाथ को बांध कर शहजादी के पाँव का बोसा लेने का हुक्म दिया गया था और इस शख्स की उम्र 40 साल से ज़्यादा है। मुलाजिम ने दावा किया है कि उन्हें मारा पीटा गया, कई घंटे तक मारा पीटा गया, इनके औजार कब्जे में ले लिए गए और फ्रांस में पॉइंट न्यूज़ मैगज़ीन को इस शख्स ने अपना इंटरव्यू भी दिया है और कहता है कि उसने शहजादी ने कहा इसे कत्ल कर दो, इसको जीने का कोई हक नहीं। शहजादी का मुहाफिज के वकील ने बताया कि हमें उम्मीद है कि जजेस शिकायत कुनंदा के बयान पर मुख्तलिफ तजाद और बेरबकी का नोटिस लेंगे। बड़े संगीन इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाए गए हैं और अलबत्ता शहजादी ने भी इस पर मुकदमा कर दिया है।
उसने कहा है कि ये जो भी कह रहा है वो
मेरे उसने हद तक इज्जत का दावा कर दिया है। ठीक है, بہرحال 2018 میں فرانس میں شہزادی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتی ہے. شہزادی نے کے محافظ پر تشدد, چوری, موت کی دھمکیاں دینے اور ایک شخص کو قید کرنے کے الزامات ہیں. 2017 میں ولی عہد بننے کے بعد محمد بن سلیمان نے سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر اصلاحات لانے کی امیدیں ظاہر کی تھیں, لیکن ابھی اس کے بھائی نے, محمد بن سلیمان نے بھی کیا کیا تھا, یعنی ترکی میں جا کے اس کے بندوں نے جمال خاشقجی, ورلڈ ریناؤن جرنلسٹ کا قتل کر دیا تھا. بہرحال ابھی یہ ٹرائل کا آغاز ہو گیا, لیٹس سی.
مگر وہ یونائیٹڈ نیشن نے بھی ابھی اس پہ اپنا قدم اٹھایا, دیکھیں اس پہ بھی کیا ہوتا ہے. دے آر آسکنگ فار ٹرائل.
کچھ بھی نہیں ہوگا ماجد بھائی, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, رائٹ اٹ ڈاؤن سم ویئر. چلیے صاحب, یہ میں آپ کو تو بتاؤں کہ جو طاقت ہے نا وہ کہیں بھی ہے. آپ پتہ ہے کہ انڈیا میں آپ ایک شخص سے ایک ہی شادی کر سکتا ہے, خاص طور پہ ہندو ایک شادی کر سکتا ہے, سیکنڈ میرج نہیں الاؤڈ, نہ عورت کو نہ مرد کو. یہ ایک انڈیا کے ارب پتی کاروباری شخص ہیں. اب ان کی عمر کتنی ہے, 72 ایئرز, تقریباً 12 یا 18 سال سے یہ مقدمے ہی لڑ. بہت امیر آدمی ہیں, بہت سے ریسٹورینٹس ہیں اس کے, اور یہ نہیں ڈوسا جو کھاتے ہیں ڈوسا, یہ اسی کی اسپیشیلٹی ہے, پہچان ہے. اور ڈوسا جو جنوبی بھارت کی روایتی ڈش ہے, وہ اس شخص کی پہچان ہے. اب ہوا یہ کہ راج گوپال کے ریسٹورنٹ پر نا, یہ تقریباً 2001 کی بات ہے, 2001 میں, ہی 72 ایئرز ایج ناؤ, اور تقریباً 12-18 سال تک تو یہ مطلب عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا. مگر اب کیا ہوا ہے کہ 2001 میں اس کے ریسٹورنٹ کی ایک اسسٹنٹ مینیجر ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی, یعنی جو ان کے ریسٹورنٹ میں اسسٹنٹ مینیجر تھے نا, تو راج گوپال نے اپنے اسسٹنٹ مینیجر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی, مگر جو ان کے اسسٹنٹ مینیجر تھے انہوں نے اس شخص سے شادی کرنے کی بجائے جس شخص کو پسند کرتی تھی اس سے شادی کر لی. راج گوپال جو یہ امیر آدمی ہے, 72 ایئرز آف ایج, بٹ 2001 میں اس نے کیا کیا کہ یہ جو اسسٹنٹ مینیجر ہے اس کی بیٹی کو اور اس کے ہسبینڈ دونوں کو اغوا کر لیا. بعد میں جیوا جوتھی جو اسسٹنٹ مینیجر کی بیٹی تھی, اس کے شوہر کو غائب ہی کر دیا. اس کے بعد اس کا شوہر مر گیا. مگر ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر کی لاش جنگل سے ملی. پولیس نے پوسٹ مارٹم کیا اور پتا چلا کہ یہ جو سرونا بھون ان کے ریسٹورنٹس کا نام ہے, اس کا مالک راج گوپال جو تھا نا, وہ ان کو قتل کرنے کا ذمہ دار تھا. 8 اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا. 2003 میں راج گوپال سمیت 8 افراد کو ان کے شوہر کے قتل کے الزام میں 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی. ہوٹل مالک نے مقامی عدالت کے فیصلے کو چنئی ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا اور 10 سال کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کروا دیا. انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی, تاہم اعلی عدالت نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. مسلسل درخواستیں مسترد ہونے کے بعد راج گوپال نے عدالت میں بیماری کی درخواست دے کر قید کی سزا سے بچنے کی کوشش کی, اور اسی سال 8 جولائی تک وہ درخواستوں کے ذریعے قید سے بچتے رہے. تاہم 8 جولائی کو سپریم کورٹ نے ان کی مزید درخواستوں کو مسترد کیا, انہیں عدالت کے حوالے خود کو کرنا پڑا. اور راج گوپال 9 جولائی کو ڈرامائی انداز میں ایمبولنس پر مدراس ہائی کورٹ پہنچے اور خود کو عدالتی حکام کے حوالے کر دیا. انہوں نے ماسک چڑھا ہوا تھا اور شدید بیمار لگ رہے تھے. عدالت نے انہیں پولیس کے حوالے کیا اور انہیں ابتدائی طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. یہ ارب پتی ہوٹل مالک کو, راج گوپال کو ہسپتال کے جیل وارڈ میں رکھا گیا, بعد میں انہیں جیل منتقل کیا گیا. اب صاحب حیران کن بات یہ ہے کہ ارب پتی شخص نے جس لڑکی سے شادی کے چکر میں ان کے شوہر کو قتل کیا, اس لڑکی نے تمام تر کوششوں مراتوں کی پیشکش کے باوجود راج گوپال سے شادی نہیں کی.
کیا بات,
یعنی اس نے اس شخص کو مروا بھی دیا مگر اس لڑکی نے شادی نہیں کی. اور خاتون نے آج تک 2001 سے لے کے آج تک
شادی نہیں.
جیوا جوتی جو ہے نو, اس نے عدالت میں اس اتنے امیر شخص کے خلاف ٹکر لی اور کیس لڑتی رہیں, और राजगोपाल किस वक्त इंडिया में 39, दुबई में, कतर में, अमान, सऊदी अरब, बहरीन, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, यानी 43 होटल्स हैं, 39 इंडिया में हैं और 43 ऑल ओवर द वर्ल्ड होटल्स हैं, और इस वक्त इनका शुमार अमीर तरीन शख्स में होता है, ही इज़ इन द जेल। इनके कामयाब बिजनेसमैन की दो वजूहात हैं, होटल के खानों का जायका और उनका मेयार, और अपने मुलाजमीन को वो सहूलियात भी बहुत अच्छी फराहम करते हैं। इनके हज़ारों मुलाजमीन हैं, अच्छी तनख्वाह देते हैं, घर देते हैं, अलाउंस देते हैं, शादी अलाउंस देते हैं और कर्जे देते हैं। अब राजगोपाल ने ज़ाती तौर पर दो शादियां की हुई हैं, तीसरी शादी की ख्वाहिश तो बीच में ही फंसी की फंसी रह गई, और तीसरी शादी की ख्वाहिश तो उनको जेल भी लेके चली गई है। और अब ये तीसरी शादी क्यों करना चाहते हैं, कहते हैं कि एक नजूमी के कहने पर, एक नजूमी था जिसने इनकी तरक्की की, इनको पेशगोई की थी, और उसने कहा कि तुम, ये जो तुम्हारा असिस्टेंट मैनेजर है, इसकी
बीवी शादी,
नो, इसकी बेटी से तुम शादी करो तो तुम्हारी तरक्की और करेगी, ठीक है। मगर वो बेटी जो है ना, अगर शायद वक्त पे शादी हो जाती तो हालात कुछ बेहतर होते, मगर अब तो लगता है वो जेल में ले गई या लड़ गई उसको। औरत की दुश्मनी बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। मरियम नवाज का इंटरव्यू ज़बरदस्ती रुकवाया गया, ये अभी रिसेंटली आपको भी पता ही होगा कि हामिद मीर के साथ पाकिस्तान जियो टेलीविज़न पे इंटरव्यू था हामिद मीर का और आसिफ जरदारी साहब का, जिसको रुकवाया गया था। अभी रिसेंटली मरियम नवाज का हम न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू होने के 2.25 मिनट के बाद रोक दिया गया। हम न्यूज़ के एंकर पर्सन नदीम मलिक ने इंटरव्यू वो दे रही थी और अपने नवाज शरीफ वालिद के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, देखभाल के बारे में बातचीत कर रही थी। अभी जो एंकर थे इनके साथ जो इंटरव्यू कर रहे थे नदीम मलिक, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि ये इंटरव्यू शुरू होने के चंद मिनट बाद ज़बरदस्ती रुकवाया गया था। उन्होंने ट्वीट में ये किया कि जस्ट केम टू नो मरियम नवाज शरीफ इंटरव्यू हैज़ बीन स्टॉप फोर्सफुली जस्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर इट स्टार्टेड। ये उन्होंने एक और ट्वीट में बताया कि जब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ब्रेक ली तो चैनल की इंतजामिया ने उन्हें बताया कि इंटरव्यू बंद कर दिया गया। इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा कि वो अपने वालिद की जिंदगी के लिए मौजूदा हुकूमत पर भरोसा नहीं करती और उनका ख्याल है कि हुकूमत उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर ये इंटरव्यू जाने भी देते, ना रोकते, तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट या का अक्स जो है ज़्यादा अच्छा पड़ता, ज़्यादा अच्छा पड़ता, मगर रुकवा दिया गया। मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ अक्वामे मुत्तहिदा से मैं भी रुजू कर सकती हूँ।
व्हाई डू यू वांट टू गिव समबडी अ टू सेंस पॉपुलैरिटी?
अब देखिए, ये राणा सनाउल्ला की बीवी भी अक्वामे मुत्तहिदा में गई है और मरियम नवाज भी अक्वामे मुत्तहिदा को रुजू कर सकती है। यानी नहीं, द सैडेस्ट थिंग इज के उन्होंने किया है कि आई इंटेंड टू डू दैट टू, यानी राणा सनाउल्ला की गिरफ्तारी पर उनके अहलिया ने अक्वामे मुत्तहिदा से रिजू किया। इसका जवाब दिया है मरियम नवाज शरीफ ने कि आई इंटेंड टू डू द सेम, और उन्होंने कहा कि बंद होने वाले 4 चैनल इस वादे पर खोल दिए गए हैं कि उनका इंटरव्यू नशर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के 4 चैनल्स को गुज़श्ता हफ्ते, आपको पता ही है, उनकी कॉन्फ्रेंस नशर करने पर बंद किया गया था। 2 दिन के बाद उनकी नशरियात को खोल दिया गया है। बहरहाल पाकिस्तान हुकूमत का मौकफ यह है कि मरियम नवाज जालसाजी के केस में अदालत से सजा याफ्ता हैं। किसी भी सजा याफ्ता शख्स को टेलीविजन पर इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। इट इज़ सैड माजिद भाई, आई डोंट नो, यानी अब ये मुल्क के जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो मुल्क के मामलात और अपनी सियासत को बचाने के लिए अगर हर मामले पे अक्वामे मुत्तहिदा में जाएंगे तो फिर ये जो पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगनी हैं तो फिर लगती चली जाए, सिंसियर तो कोई भी नहीं है।
नहीं नहीं, मगर ये इनका भाई, मैंने कल भी कहा था कि हर मुल्क और हर ज़मीन का कानून होता है, कवानीन होते हैं, तो वो उस कवानीन के तहत उनको, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो सज़ा मिलेगी, अगर नहीं तो नहीं मिलेगी। और अदलिया पे हर एक को दे हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी,
صاحب پاکستانی ٹیم کے سابق اور عظیم کپتان، ان کا انتقال ہوا۔ پاکستان کو پہلی مرتبہ اولمپک چیمپئن بنوانے والے عبدالحمید حمیدی نے 1960 میں پاکستان کو اولمپک گولڈ میڈل جتوایا تھا، جبکہ پاکستان فوج میں بطور بریگیڈیئر بھی انہوں نے خدمات انجام دی تھیں۔ عظیم کپتان انتقال ہوا ان کا، اور پاکستان کی پہلی مرتبہ اولمپک چیمپئن بنانے والے شخص تھے یہ۔ اور قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عبدالحمید حمیدی کی وفات ہوئی۔ تمام انسانوں کو الٹیمیٹلی موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا۔ یہ 1927 میں پیدا ہوئے، لمبی زندگی جیے، اور پاکستانی ہاکی ٹیم کے پہلے کپتان تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا جی۔
انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد تو پاکستان نے کئی اولمپک کے این گولڈ میڈلز جیتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کی ہاکی ٹیم جو تھی نمبر ون ان دا ورلڈ تھی، مگر اب دس اوکے۔ عرفہ جی، کچھ اسپانسرز کے پیغامات لے لیں۔ دعوت یاور میں ہمارا کچھ دیر ہو گئی ہے، معذرت چاہتے ہیں، اور کچھ اسپانسرز کے پیغامات، پھر پروگرام میں واپس آئیں گے۔ 4166201778 ہمارا فون نمبر ہے۔
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ 100 ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171।
زندگی کی سب سے اہم ضرورت پانی۔
پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پانی کی اشد ضرورت ہے، جنید جمشید مرحوم نے شروع کیا ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن۔ اس کا مقصد سولر واٹر پلانٹ کے ذریعے پینے کے صاف پانی کی فراہمی۔ آئیے آپ اس کار خیر میں شامل ہوں، اپنا نام امر کر دیجئے۔ 19 جولائی جمعے کے دن 7:70 AM پر ڈونیٹ جینرسلی فار سولر واٹر پلانٹس۔
جوائن 7:70 AM 4 to 5 PM Friday, July 19th. 416-620-1778. 416-620-1778.
विनायक फर्नीचर मिसिसागा लोकेशन, कहां 2915 अर्जेंटिया रोड इन मिसिसागा, वेस्टर्न चर्च अर्जेंटिया मेजर इंटरसेक्शन। अपनी कम्युनिटी का 15 साल पुराना स्टोर, जहां पर बेडरूम सेट मिलता है 499, कॉफी टेबल 199, मैट्रेस $99 ओनली। फर्नीचर से रिलेटेड कोई जरूरत हो, पहुंचिए 2915 अर्जेंटिया रोड इन मिसिसागा। फोन नंबर 9058582667।
نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا حلال فوڈ فیسٹیول آپ کے اپنے شہر ٹورانٹو میں July 20 and 21، دا انٹرنیشنل سینٹر مسیساگا، انٹرنس 5۔ فار مور انفارمیشن کال 647-286-5727، 647-286-5727۔
The world of endless options FPL brings for the first time the finest from Pakistan. پاکستان کے بہترین ڈیزائنرز ایگزیبٹنگ ایٹ ہلٹن گارڈن ان مسیساگا، ایگلنگٹن اینڈ میتھسن ٹورانٹو آن دا 13th of July فرام 11 AM ٹل 7 PM۔ یو ڈونٹ وانٹ ٹو مس دس ون فرام فیشن پاکستان لاؤنج۔
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے، کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر، پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے۔ اس وقت کئی سوال اٹھدے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی، کسٹڈی کس نو ملے گی، تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے۔
ایس این ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لئی لڑن واسطے لیاقت ہے۔ اپنے حق جانن لئی یا صلاح لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نو کال کرو 416-655-2000۔
بزنس رن کرنا مشکل ہے، سو پرنٹر کی پرابلم سے اسے اور مشکل کیوں بنائیں؟ فاسٹر اور سمارٹر پرنٹ کریں اپنے نئے ایچ پی آفس جیٹ پرو پرنٹر کے ساتھ، اور سبسکرائب کریں ایچ پی انسٹنٹ انک، کینیڈاز اونلی انک سبسکرپشن سروس، جو انک آپ کے گھر پہنچائے ختم ہونے سے پہلے۔ آج ہی خریدیں نیو ایچ پی آفس جیٹ پرو پرنٹر اور سبسکرائب کریں ایچ پی انسٹنٹ انک اسٹارٹنگ ایٹ $399 a month۔ وزٹ hp.ca یا اپنے نزدیکی ایچ پی ریٹیلر۔
हफ्ते के सातवां दिन खुलने वाली मैकेनिकल शॉप ब्राइट ऑटो सर्विस। कोई भी मेक या कोई भी मॉडल, अगर आपकी गाड़ी में खराबी हो जाए तो ले आइए ब्राइट ऑटो सर्विस पर। गाड़ी की डिटेलिंग या फिर रस्ट प्रूफिंग सिर्फ और सिर्फ $50 में। तशरीफ लाइए ब्राइट ऑटो सर्विस, 8 स्ट्रैटन एवेन्यू ब्रैम्पटन, एडवांस एंड डिक्सी के कॉर्नर पर, 9057900019।
एक इंफॉर्मेशन आप बेशतर इसके के क्रिकेट की न्यूज की तरफ लेके जाएं। एयर कनाडा की फ्लाइट जो है उसमें ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही थी, उसको फिर हवाई के जजीरे पे उतारा गया क्योंकि उसमें इतनी टर्बुलेंस थी। कहते हैं बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं उसमें,
35 लोग
जख्मी हुए हैं। यानी इतनी
होनोलुलु जा रही थी वो, सिडनी होनोलुलु पे, टोरंटो से होनोलुलु पे जा रही थी और वहाँ पर रास्ते में टर्बुलेंस इतना आया कि दे आर 35 पीपल आर इंजर्ड, होपफुली एवरीबॉडी इज ओके। आरफा जी ले चलते हैं क्रिकेट के। फाइनली दो फाइनलिस्ट आ गए हैं, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एक्सपेक्टेड।
देखिए जी, इंग्लैंड 27 साल के बाद आया है इसमें। बहरहाल वसी बता सकते हैं, हम वेलकम करते हैं वसीउद्दीन को सिटीस्केप के साथ। आप वाबस्ता हैं प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारी रिक्वेस्ट है वसीउद्दीन से आप रब्ता कीजिएगा। और वसीउद्दीन का नंबर मैं आपको दे देती हूँ, नंबर दे दीजिए हमारे चले वसीउद्दीन, 3642 5663 6 4 2 5 6 6 3 6 4 2 5 6 6 3 6 4 2
जी। वसी क्या हुआ फिर फाइनल में? फाइनली दो टीमें पहुंच गई हैं
जी माहित भाई, दो टीमें फाइनली पहुंच गई। दोनों दिन सेमीफाइनल हुए। आज का रिजल्ट तो इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन कल जो हुआ वो आपने भी देखा, सबने देखा कि इंडियन टीम जिसका कोई सोच नहीं सकता था कि न्यूजीलैंड की एक पतन कमजोर टीम इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। इवन मैंने भी इंडिया को प्रेडिक्ट किया था, अगर आपको याद हो कि इंडिया और इंग्लैंड, मैंने इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल प्रेडिक्ट किया था। आई थिंक आपने शायद ऑस्ट्रेलिया पिक की थी।
मैंने ऑस्ट्रेलिया को पिक किया था, यस।
तो आप तो उससे बाहर हो गए टूर्नामेंट। मैं टूर्नामेंट में हूँ, मैंने इंग्लैंड पिक की थी, लेकिन इंडिया को मैंने पिक किया था और न्यूजीलैंड के इंडिया और इंग्लैंड फाइनल खेलेंगे। तो भाई भाई जिस तरह इंडियन टीम हारी, एक मॉडेस्ट टोटल था, ठीक है ना, जो कि 230 रन का टोटल था, जो कि इंडियन प्लेयर से नहीं बना। इंडियन की स्ट्रांग बैटिंग लाइन को देखते हुए कोई ये नहीं सोच सकता था कि न्यूजीलैंड जो है ये इनको टोटल नहीं बनाने देगा। लेकिन स्टार्ट में एग्जैक्टली वही हुआ कि 5 रन पे इंडिया के 3 बेहतरीन बैट्समैन, जिसमें रोहित शर्मा,
टोटल कोलैप्स हो गया, टोटल कोलैप्स।
क्योंकि भाई भाई देखिए, मेरा ख्याल में ये हुआ है कि इंडियन प्लेयर जो अब तक जो इंडिया जीत रहा था बहुत ही आसानी से जीतता हुआ चला रहा था, वॉक इन द पार्क थी इंडियन टीम के लिए ये वर्ल्ड कप सो फार, और उनके टेस्ट होने का मौका नहीं मिला। यही चीज जो होती है ना, यही चीज टीमों को लेट उगती है, जो मैंने देखा है। आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ था, रोहित शर्मा हर मैच में सेंचुरी बना रहा था, ओपनर राहुल था वो 50 करता था, कोहली आगे वो 70-80 करता था, तो जो नीचे के बैट्समैन थे उन पर कभी प्रेशर आया ही नहीं था पूरे वर्ल्ड कप में। पहली दफा उनकी बैटिंग टेस्ट हुई और ट्रेंट बोल्ट और हेनरी दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं नई बॉल के, और चूंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी माजिद भाई मैनचेस्टर में, ठीक है, जो कि बॉलर्स को हेल्प करती है। न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने उस दिन बैटिंग की, पहले उस दिन भी बारिश की, ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन उन्होंने समहाउ अपना टोटल 200 से क्रॉस किया और अपने आप को एक ऐसा स्कोर दिया कि उस पर बॉलर्स फाइट कर सके। तो न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है उस चीज का, और उन्होंने पिच को देख लिया था कि ये पिच 300 रन वाली नहीं है, यहाँ पे 225 में भी हम मैच फंसा सकते हैं। तो उन्होंने 225 किए। जब इंडियन बैटिंग आई तो जो शुरू में उनको नई बॉल थी, अच्छा एक न्यूजीलैंड को एज ये हुआ मजबूत, चूंकि मैच दो दिन चला आपको पता है, एक दिन बारिश हो गई थी, तो दूसरे दिन सुबह ही सुबह मेरे पास 4-5 ओवर रह गए थे न्यूजीलैंड के। तो इंडियन टीम की बैटिंग सुबह आई, जो सुबह मॉइस्चर ज्यादा होता है विकेट में, जिसका फायदा उठाया न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने और इंडियन बैट्समैनों को जो है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो की विकेट्स हम कहते हैं, और राहुल जो कि तीनों इन फॉर्म बैट्समैन थे, 5 रन पे जब 3 आउट कर दिया आपने तो फिर आपके पास बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना। लेकिन बाद में जडेजा ने 77 रन की एक शानदार इनिंग खेली, धोनी ने उनकी हेल्प की और ऐसा लगता था कि मैच इंडिया वापस आ जाएगा, लेकिन धोनी का जो रनआउट जो काफी मशहूर हुआ आपने भी देखा होगा, वो डायरेक्ट हिट लगी उस स्टेज पे, न्यूजीलैंड ने डायरेक्ट हिट किया, धोनी को जब बाहर किया तो इंडियन टीम जो बाहर हुई मैदान, उससे पूरे इंडिया में एक सोगवार फिजा जो है वो चल पड़ी है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान टीम तो फेवरेट नहीं थी माजिद भाई, हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन इंडियन सारे फैंस जो हैं, आपको मैं बताऊं फाइनल के जो लॉर्ड्स कप खेला जाना उसकी 80% टिकट इंडियंस ने बाई किए हैं।
एग्जैक्टली,
क्योंकि दे वर सो होपफुल, दे वर सो कॉन्फिडेंट कि इंडिया ने तो फाइनल खेलना ही खेलना है, और ऐसा लग रहा था लेकिन अब क्या हुआ, उनकी टीम नहीं पहुंची, तो जो इंडिया कल हारा उसके बाद से आप देखने के मनाजिर थे कि जिस तरह तमाशाई उनके जो है मुंह लटका के बेचारे ग्राउंड से जा रहे थे, बिल्कुल कुछ बच्चे तो इवन रो रहे थे, ठीक है। और इसी तरह इंडिया के पूरे लाइक बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर वेरी वेरी सैड, वेरी अपसेट कि ये क्या हो गया। ऐसा पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, मुझे याद है 87 में हम बहुत फेवरेट थे, सेमीफाइनल आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, तो ये टीमों पे मूवमेंट्स आते हैं। तो ये इंडिया का जो है वो बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेड था ये रिजल्ट, जो कि न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता और अब फाइनल में। अच्छा, अच्छी बात माजिद भाई ये कि दोनों वो टीमें फाइनल में पहुंची जो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती,
सही,
ठीक है ना। न्यूजीलैंड भी करीब आया बेचारा, कई दफा सेमीफाइनल खेला है नहीं पहुंच पाया फाइनल में, इंग्लैंड भी कई दफा सेमीफाइनल फाइनल खेला है लेकिन नहीं जीत पाया। तो अच्छी बात यह है जिसकी मुझे खुशी है कि एक दफा नया वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम आपको पता है 5 दफा जीत चुकी है, तो ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तानी फैंस ऑस्ट्रेलिया ने काफी यानी कि ज्यादातर सपोर्ट इंग्लैंड की साइड थी, तो अब दोनों टीमें जो है वो ऐसी पहुंची हैं जिन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑन संडे।
और क्या प्रेडिक्शन क्या है
भाई? भाई मेरी तो इंग्लैंड की टीम है, मैंने पहले इंग्लैंड पिक, अभी मैं इंग्लैंड को पिक करूंगा। अच्छा, आज जो दूसरा सेमीफाइनल थोड़ा उसका भी बताता चलूं कि आज का दूसरा सेमीफाइनल बड़ा वन साइडेड हुआ जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है वो 223 रन बनाए सिर्फ, और उसके बाद बासानी इंग्लैंड ने वो टारगेट 32 ओवर में पूरा कर लिया सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे। ठीक है भाई, तो वो मैच बहुत ही वन,
इंग्लैंड की बड़ी स्ट्रांग टीम है, मगर मैं न्यूजीलैंड को पिक कर रहा हूँ सर।
चले, आपकी न्यूजीलैंड है, मेरी इंग्लैंड है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ जो भी टीम जीतेगी हमें आई विल बी हैप्पी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि दोनों टीमों ने बहुत मेहनत की है और दोनों टीमें डिजर्व करती हैं।
मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की टीम ने दोनों टीमों को मारा है।
हाँ, ये पाकिस्तानी फैन इस बात से बहुत खुश है कि अब दो टीमें फाइनल में वो पहुंची हैं जिनको दोनों ने, पाकिस्तान ने दोनों टीमों को हराया है पूल मैचेस में, न्यूजीलैंड को भी हराया और इंग्लैंड को भी हराया है।
सही।
तो हमारे लिए एक तरह से ये अच्छी चीज है कि हम ये कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन वो है जिसको हमने पूल मैच में हराया था।
एग्जैक्टली।
तो मैं अब देखिए फाइनल है, फाइनल में जो टीम प्रेशर हैंडल करेगी, ऑफकोर्स इंग्लैंड फेवरेट है, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है,
मगर क्राउड कहाँ रहेगा क्योंकि 80% तो टिकटें बिक चुकी हैं। वो इंडियंस
ये है कि अब ये रीसेल करेंगे टिकट, जो इंडियंस फैंस ने दी हुई है ना टिकट, ये रीसेल करते हैं। तो इंग्लैंड के अब लोग जाहिर बात है जिनको टिकट नहीं मिल पाए इस वक्त उनकी टीम फाइनल में पहुंची है, तो दे वुड लव टू बाय फ्रॉम देम, ठीक है ना। सारी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ये कि आप देखिएगा कि इसमें फैंस होंगे इंग्लैंड के भी, न्यूजीलैंड के तो इतने फैंस नहीं है इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड की टीम चूंकि फाइनल में पहुंची है, हालांकि ये मैं समझता हूँ इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा बूस्ट होगा, क्योंकि आपको वैसे मैंने बताया था कि इंग्लैंड में क्रिकेट इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर गेम एनी मोर, ठीक है, लेकिन लोगों ने इतना फॉलो नहीं करते, लेकिन अब जब आपकी टीम पहुंच जाती है, जैसे टोरंटो राप्टर्स ने जब फाइनल प्ले ऑफ खेला तो कई लोग थे, इवन मैं भी इतना फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन जब टीम हमारी प्ले ऑफ में पहुंची तो मुझे भी सारे प्लेयर्स के नाम पता चल गए, ठीक है, मेरे बच्चों को एक क्रेज खुरा, वो सुबह शाम बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो होता है ये जब आपका मुल्क आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनती है, आपको याद होगा 92 में जब हम इमरान खान की क्यादत में जीते थे तो पाकिस्तान में हर मैंने की क्रिकेट को एक बूस्ट मिला था, हर बच्चा जो है वो क्रिकेट की तरफ जाना चाह रहा था, हर बच्चा वसीम अकरम बनना चाह रहा था, हर बच्चा इमरान खान बनना चाह रहा था, हर बच्चा जो है वो जावेद मिराज बनना चाह रहा था। तो इसी तरह इंग्लैंड को ये बहुत मैं समझता हूँ इंग्लैंड जीतता है तो इट विल बी अ बिग बूस्ट इन इंग्लैंड, कि वो क्रिकेट को एक बहुत बूस्ट मिलेगा और वहां पे क्रिकेट दोबारा पॉपुलर हो जाएगी।
वसीउद्दीन जो सिटीस्केप से भी वाबस्ता है, और वसीउद्दीन से हम फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, ही इज द एक्सपर्ट इन क्रिकेट। 4165
इंशाल्लाह, जी जी गो अहेड,
4165663642 वसीउद्दीन का फोन नंबर है। वसीउद्दीन रियल स्टेट से वाबस्ता है, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट भी है जो आप बात करना चाह रहे हैं।
वर्ल्ड कप की इंशाल्लाह लास्ट हम मंडे को आप मुझे आने लीजिएगा तो हम वर्ल्ड कप को रैप अप करेंगे पूरे, क्योंकि फाइनल हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला, उस पर हम बात करेंगे और एक थोड़ा सा मैच का समरी जिसे कहते हैं वर्ल्ड कप की, वो मैं कोशिश करूंगा अपने सुनने वालों से शेयर करूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे प्रोजेक्ट की जो बात है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया सिमको में। सिमको जो है आपको पता है कि ये वेस्ट साउथ वेस्ट साइड पर है, ठीक है, ब्रेंटफोर्ड से आगे मिसिसागा से तकरीबन 1.5 आवर की ड्राइव है, ठीक है। वहां हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया जो कि आज ही हमारी इसकी सुबह प्रेजेंटेशन थी, तो मैं आपके रेडियो पर डिस्कस करता चलूं, लोगों से शेयर करता चलूं। उसमें हमारे पास मजबूत बैंगलोर टाउन हाउसेज हैं, तो चूंकि आपको पता है छोटी सिटीज में बैंगलोर ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो ये बैंगलोर टाउन हाउसेज है 1.5 कार गैराज की, और ये इनके जो साइजेस हमारे पास है माजिद भाई 1450 स्क्वायर फीट है, 1550 स्क्वायर फीट है, प्राइस रेंज बहुत अच्छी है माजिद भाई, अमेजिंग प्राइस है। चूंकि आपको पता है जब बैंगलोर होते हैं तो उसमें आपको लैंड ज्यादा मिलती है कंपेयर टू, क्योंकि हम जो स्क्वायर फीट नापते हैं 1500 स्क्वायर फीट वो ऊपर नीचे मिला के होता है आपको पता है ग्राउंड प्लस वन, लेकिन ये पूरा 1500 स्क्वायर फीट का टाउन हाउस जो है वो एक ही फ्लोर पर है, इसमें दो बेडरूम के भी हैं, तीन बेडरूम के भी हैं, ठीक है, बेसमेंट है लेकिन अगर आप फिनिश कराना चाहते हैं तो उसके अलग पैसे हैं, लेकिन बेसमेंट इसमें है। तो अगर आप सिर्फ इवन के वन बैंगलोर भी लेते हैं तो अच्छी खासी आपके पास स्पेस है, 1400 स्क्वायर फीट की स्पेस पूरे एक फ्लोर के ऊपर है, तो आपके बेडरूम वगैरह साइज बड़े अच्छे होते हैं। तो हमारे पास उसके प्राइस भी बहुत ही अच्छे हैं, 367 से लेकर 399 तक के बीच में हमारे पास है, जो कि टाउन हाउस के लिहाज से अमेजिंग प्राइस, ठीक है ना। तो जो लोग अब तक उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि अब तक रियल एस्टेट में माजिद भाई एंट्री नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, आपको एट सम पॉइंट दे कैन स्टार्ट, क्योंकि 3.5 लाख एक ऐसा प्राइस है जो हर कोई कंफर्टेबल होता है। और सबसे अच्छी बात है माजिद भाई वो ये है कि इसका डिपॉजिट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ओनली 5% डाउन, ओनली 5%। तो अगर आप 3,60,000-3,70,000 का यूनिट ले रहे हैं तो उसकी डाउन पेमेंट बन रही है कोई $17,000-18,000, और उसमें भी हमने ऑप्शन दिया है $1,000 पर मंथ पे भी आप वो ले सकते हैं। तो डिपॉजिट स्टेट इज अमेजिंग, और ठीक है क्लोजिंग भी हमारे पास डिफरेंट टाइमिंग्स पर है माजिद भाई, 1 साल वाली भी है, 1.5 साल वाली भी है, 2 साल वाली भी है, ठीक है। तो वो भी आपके डिपेंड करता है आप एंड यूजर हैं या आप इन्वेस्टर हैं जो भी हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्लोजिंग भी डिफरेंट मिल रही है, डिपॉजिट इज टू लो, यानी कि अगर आप सोचें माजिद भाई आप 4 लाख का भी लेते हैं तो $20,000 आपको सिर्फ दे रहे हैं, दिस इज नथिंग, राइट, असाइनमेंट क्लॉज है इसमें, और 1.5-2 साल बाद आपको यूनिट मिलता है, तो अगर उस पर आपने 20,000 आज इन्वेस्ट किए हैं, अगर 30,000-40,000 भी बढ़ते हैं तो आपका पैसा जो है वो मोर देन डबल परफॉर्म करता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कम प्राइस में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जीटीए के अराउंड में, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। वो 367 से लेके प्राइजेज है 399 के बीच में डिफरेंट साइजेस के एंड यूनिट्स भी हमारे पास हैं। तो जो भी कोई इसमें इंटरेस्टेड है मुझे कॉल करे, मैं उसके पास उसके सारी फ्लोर प्लान्स, प्राइस लिस्ट, ब्रोशर उस प्रोजेक्ट का मैं सारी चीजें उसको ईमेल कर सकता हूँ। आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं 416-566-3642 पे अपना ईमेल एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दें अगर आप बिजी हैं, तो मैं आपको जो है उस पर आपके व्हाट्सएप पे या आपको ईमेल पे वो मैं उसकी सारी जो डिटेल्स है प्रोजेक्ट की वो भेज दूंगा। और अगर कोई हमारे पास तकरीबन कोई 80 के करीब यूनिट्स हैं इसमें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 20-25 यूनिट है, हमारे पास 80 यूनिट्स हैं इसमें। तो इसमें जो भी कोई सुनने वाला अगर बुक कराना चाहता है, एंट्री चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, दे कैन ऑलवेज कॉल मी एट 416-566-3642। आई रिपीट अगेन 416-566-3642। टेक्स्ट करें मुझे, कॉल करें, एंड आई वुड लव टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन विद यू।
थैंक यू सो मच, और मंडे को इंशाल्लाह आपसे भी बात
होगी। इंशाल्लाह
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बसीउद्दीन से हमने आपकी बातचीत करवाई। और फोन नंबर अगेन इज 416-566-3642 इनका फोन नंबर है।
जनाब माजिद भाई एक 28 साल का नौजवान है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बताते हुए, ये टोरंटो की न्यूज़ है कि 28 साल का नौजवान है और सेक्सुअली इसने असॉल्ट किया एक 77 इयर्स के आदमी को, और फिर उससे उसका पैसे भी छीन लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने, नौजवान लड़का 28 साल की इसकी उम्र है, उसने लिबर्टी विलेज जो हमारा टोरंटो में है वहीं पर ये रहते थे, 4 अप्रैल 2018 को असॉल्ट किया, और फिर इस वाक़े के बाद ये दोबारा उसको मिला और उसने उससे पैसा भी छीला, और एक और मौके के ऊपर। इस शख्स का नाम इसको आज 2019 में वायलेंट और डेंजरस करार दिया गया है। आब्दी दायरी इसका नाम है, आब्दी दायरी, 28 साल इसकी उम्र है, इसके ऊपर 10 चार्जेस लगे हैं। इट्स सैड के मतलब आई डोंट नो क्या वजह है कि 77 ईयर्स के ओल्ड आदमी को इन्हें इसने असॉल्ट करने के बाद उससे पैसे छीने और आज सबके लिए इंसल्ट का बायस बना।
अभी लेटेस्ट तो जो हमारा गैलप पोल है वो मेरे पास नहीं है, मगर जुलाई फोर्थ का जो गैलप पोल था उसमें कंजर्वेटिव के पास 35% की लीड थी, लिबरल्स के पास 31.7 की लीड, न्यू डेमोक्रेट्स 13.8, ब्लॉक क्वेबेक्वा 4.5%, ग्रीन पार्टी की 10.6% पॉपुलैरिटी, एंड इसके बाद 4.4 इज अदर्स इंडिपेंडेंट एंड एवरीबॉडी एल्स। तो इसके अलावा अगर हम اونٹیریو کا دیکھیں تو عارفہ جی, اونٹیریو میں لبرل پارٹی جو ہے اس وقت لیڈ کر رہی ہے. اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو لبرل پارٹی کین میک میجورٹی گورنمنٹ 41.6%.
میرا خیال ہے ان کو ڈبویا ہے فورڈ گورنمنٹ کے معاملوں نے,
ایگزیکٹلی
جو ہمارے پروونس کے معاملے ہیں. مگر ماجد بھائی اگر میں بڑے آنےسٹلی بات کروں, مجھے پتا ہے آپ بھی مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, فورڈ گورنمنٹ نے اگر کچھ کٹس کیے ہیں نا تو وہ ناجائز نہیں.
انہوں نے ابرپٹلی کر دیا کچھ,
مگر دیکھیے وہ ناجائز نہیں ہے.
نہ
اگر آپ جب بھی کسی چیز کو ڈیفیسٹ سے نکالنا چاہتے ہیں نا, یا اس کو
somebody has to pay the price,
somebody has to pay the price, اور there were few things جو کہ ان نیسیسری تھیں, یعنی آپ کو جب فوائد ملنے لگتے ہیں تو ناجائز فوائد بھی آ جایا کرتے ہوتے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے بعض
کا ڈیفیسٹ کم کیا.
ہاں دیکھیے جی, اس ملک کے جو معاملات چل رہے ہیں, کینیڈا پینشن پلان, اب بعض چیزیں فیڈرل میں چلی گئیں, یعنی وہ لوگ جو کنٹریبیوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, دے نیڈ مور ینگ پیپل ناؤ, کیونکہ دیر از اے ٹائم کہ لوگوں کو پینشن نہیں ملنی. ٹھیک ہے, تو فیڈرل جو ہماری پروونس کی گورنمنٹ ہے, اگر انہوں نے چند ایک پابندیاں لگائی ہیں تو یو نو واٹ, آئی تھنک اف آئی ایم سنسیئر ود دا کنٹری اینڈ آئی ایم ناٹ سیلفش فار مائی اون بینیفٹس, تو یہ پابندیاں مانگتی تھیں, یعنی دیٹ از فار دا بینیفٹ آف دا کنٹری.
لبرل پارٹی کے اس وقت 41.6% فیورٹس ہیں, کنزرویٹو پارٹی کے 32.8%, این ڈی پی از 11.3%, گرین از 9.1%. دس از اونٹیریو. اگر نیشنلی دیکھا جائے تو عرفہ جی, بی سی میں نیک ٹو نیک ہے کنزرویٹو اینڈ لبرل پارٹی, اینڈ البرٹا میں جو ہے وہ ان کی زیادہ میجورٹی ہے, ادھر نمبر ٹو پہ لبرل پارٹی ہے. پریریز میں بھی کنزرویٹو از لیڈنگ لبرل پارٹی. اونٹیریو اور کیوبیک اور اٹلانٹک, یہ تین جگہیں ہیں جہاں پر زیادہ تر ووٹس بھی یہاں پر کے زیادہ ہیں اور سیٹس بھی یہاں پر زیادہ ہیں, اور وہاں پر جو ہے اونٹیریو کیوبیک اینڈ اٹلانٹک ریجن میں, یہ تینوں جگہ جو ہے لبرل پارٹی لیڈ کر رہی ہے اینڈ کنزرویٹو از نمبر ٹو ہیئر.
ماجد بھائی, جو نوجوان ہیں نا, میرا خیال ہے جو ینگ پیپل ہیں, دے آر ویری انٹرسٹنگ ایٹ دا آئی بلیو, میں یعنی دے آر ریڈی ٹو ٹیک اینی رسک. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے. آپ بتائیں کہ کوئین کے محل میں اس کے بیرونی جو فرنٹ کی جو دیوار ہے یا گیٹ ہے, ایک 22 سال کا نوجوان ہے کہ اس دیوار پہ چڑھ گیا, اس کو اریسٹ کر لیا گیا, حالانکہ اس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو نہیں تھا. بعد میں اس کو ریلیز کر دیا گیا, پتہ نہیں کوئین کو بتایا کہ نہیں, مگر یہ 22 سال کا نوجوان ہے جو ان کا جو بکنگم پیلس ہے اس کے فرنٹ گیٹ کے اوپر چڑھ گیا. مجھے تو لگتا ہے صرف مطلب اس وہ
مطلب جسٹ فار فن کر رہا ہوگا,
جسٹ فار فن کر رہا ہوگا, مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. ایک اور گیت کی جانب لے کر کے بڑھتے ہیں. صاحب, آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون دیا ہے اس گیت کو ڈاکٹر غزالہ زید نے. فیملی ڈینٹسٹ ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ کا کلینک ہے, آپ کے پاس انشورنس ہے یا نہیں, آپ ضرور ڈاکٹر غزالہ زید کے کلینک کو ایک بار وزٹ کر لیجئے گا, اینڈ یو ول بی کنوینسڈ کہ میں جو کہہ رہی ہوں آئی مین اٹ. ونڈرفل ڈاکٹر ہیں, سیڈر برے ڈینٹل کلینک کے نام سے ان کے کلینک کا نام ہے. ڈاکٹر غزالہ زید 416-945-1000. اورینٹل کاسٹیوم پہ بھی ہم آپ کو لے کے جانا چاہیں گے, اورینٹل کاسٹیوم جہاں سے بہت خوبصورت لباس آپ خرید سکتے ہیں. 905-569-1515-569-1515. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی ملاقات کروائیں. انتہائی خوبصورت اور ایک دو نئی بیسیوں برائڈل ڈریس, پارٹی ویئرز ود ان یور افورڈیبلٹی رینج آپ کو ملتے ہیں اورینٹل کاسٹیوم سے. 905-569-1515-569-1515 اورینٹل کاسٹیوم کا نمبر ہے. میں ایک اور انفارمیشن دیتی چلوں, اور یہ ہے شاہین تکائن کباب کی. لذیذ ذائقے دار کھانا کھانے کے لیے رات کو 11 بجے تک اوپن شاہین تکائن کباب, 416-696-7535. پروگرام ساز آواز کا ریفرنس دیجیے گا شاہین شاہین تک کا ان کباب کو وزٹ ضرور کر لیجیے. 416-696-7535 ان کا نمبر ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو اورینٹل کاسٹیوم پہ سٹائلز ہیں, ڈیزائن ہیں, کوالٹی ہے, ورائٹی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا برائڈل میں ہی بیسیوں طرح کے آپ کو برائڈل ڈریسز مل سکتے ہیں, پارٹی ویئر, چوڑیاں, جیولری, شوز, پرس, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, ساڑیاں آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, شالس جو آج کل کا فیشن ہے. اورینٹل کاسٹیوم پہ ہمارے ساتھ ہیں صفیہ بی بی. صفیہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام عرفان, کیسی ہیں آپ؟
اللہ کا بہت شکر ہے. اورینٹل کاسٹیوم کا میں جب ذکر کرتی ہوں تو اورینٹل کاسٹیوم پہ ڈیزائن ہیں, سٹائلز ہیں, ورائٹی ہے, چاہے وہ جیولری ہو, چاہے وہ پرسز ہوں, چاہے وہ مردوں کے لیے شیروانی ہو, چاہے بچوں کے لیے شلوار قمیض ہو. برائڈل میں آپ کے پاس, یو آلریڈی ہیو برائڈل سٹف, از دیٹ رائٹ؟ ڈو کریکٹ می.
یس وی ڈو, وی ہیو لاٹس آف برائڈلز ہیئر. In fact, we have a lot of brides and grooms coming by. That's because wedding season bhi kafi hai. Actually, you know, I was surprised ke wedding season, we say, you know, jo summer mein time aata hai, ke usko wedding season hum kehte hain. Lekin wedding season has been year-round now, you know, even winters mein bhi kafi shaadiyan hoti hain. But nevertheless, kafi humare paas variety hai bridals mein. So bridal outfits hain, brides ke liye, themselves for the reception, nikah, you know, اس کے لیے مہندی وغیرہ کے لیے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ برائڈلز جب ہم کہتے ہیں تو پھر اس میں فار برائڈز میڈز وغیرہ کی ڈریسز بھی ہیں, اور جیسے یو نو برائڈز فیملی. اینڈ یو نو آئی آلویز لائک ٹو مینشن کہ یہاں پہ مینز ویئر بھی ہم کافی کیری کرتے ہیں. تو یو نو گروم کا تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے, شیروانی اور جو مہندی کے لیے اور اس طرح کے فنکشنز کے لیے بھی ہوتے ہیں. And we also carry shalwar kameez for, you know, the regular casual wear can be hote. And in fact, this week we have a special on for the men. Aur usme aapke men's wear or boys wear mein there's a special sale on this week. So definitely aap aaye aur dekhein. There's lots to see. Aur usme formals mein bhi hain, casuals mein bhi hain. So, you know, that's my two cents.
بہت زبردست بوتیک ہے اور یہ اورینٹل کاسٹیوم ہے. میں آپ سے کہتی ہوں خریداری بعد کی بات ہے, جس کو سی اٹ یور سیلف ایز آئی سیڈ کہ برائڈل پارٹی ویئر, آم اسٹچڈ, انسٹچڈ, جیولری, پرسز, شوز, مردوں کے لیے, بچوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بچیوں کے لیے آپ کپڑے لے سکتے ہیں. عام سادہ شلوار قمیض, پاجاموں, آپ ورائٹی مل سکتی ہے پاجاموں میں. اور اورینٹل کاسٹیوم ایڈریس دیجیے بیٹا ہمیں اور اپنا فون نمبر دیجیے.
3180 And the phone number is 905-569-1515.
Again, the number is for Oriental Costume, 905-569-1515, 905-569-1515, 3180 Ridgeway Drive in Mississauga. Safiya, thank you so much.
Thank you for having me. Thank you.
Safiya sir ne aapki baat cheet karwai aur chaliye sahab aapko ek geet ki taraf liye chalte hain hum. And ye geet Alamgir ki aawaz mein hai. Sham se pehle aana samaap farmaiye. 4166201778 hamara phone number hai.
پہلے آنا دھوپ ساری گل رہی ہو, شام سے پہلے آنا دھوپ ساری گل رہی ہو, پھول سارے کھل گئے ہو, موسم سارے لے آنا.
से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्लर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साज़ो आवाज़ का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
एशियन फूड सेंटर इंडियन कैनेडियन साफ सुथरी ग्रोसरी देनाल
कारकार विच मशहूर हो चुकिया एशियन फूड सेंटर हमेशा सस्ते रेट ते वधिया सेवावां देण लई वचनबद्ध है।
अपने एरिया विच पेंदे किसी भी स्टोर विच जाओगे तो जरूर बचत पाओगे।
वधेरे जानकारी लई एशियन फूड सेंटर दा इको एक नंबर याद रखो 416-740-3262।
एशियन फूड सेंटर 416-740-3262।
कैनेडियन इमिग्रेशन के कवानीन वक्तन फवक्तन तब्दील होते रहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आपकी इमिग्रेशन का केस माहिराना तरीके से अप्लाई किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और हमारी फर्म हर तरह के केसेस, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो या बिजनेस क्लास, फैमिली क्लास, स्पॉन्सरशिप हो या विजिटर वीजा, कामयाब तरीके से सबमिट करती है। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हमारे लॉ ऑफिस में ऑसबर्न बार्नवेल बैरिस्टर एंड सोलिसिटर हैं, जो डिपोर्टेशन रुकवाने और कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के पेचीदा केसेस करने में 25 साल तजर्बा रखते हैं। आप मुझसे 9055130012 पर रابطہ कर सकते हैं।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविस ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
मेसमराइज ऑप्टिकल, दूर या करीब की नजर कमजोर है, दुनिया के खूबसूरत रंगों को देखना, लिखना, पढ़ना, अपने बच्चों की पोरों, उनके बालों, उनके चेहरे को एंजॉय करना, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, बच्चों के लिए एचडी डिजिटल लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज, फ्री बाईफोकल प्रोग्रेसिव लेंसेज, फ्री ट्रांजिशन एसवी लेंसेज, 50% तक ऑफ। मेसमराइज ऑप्टिकल तमाम इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। 1780 मार्कम रोड, यूनिट B2, स्कारब्रो में, शॉपर्स ड्रग मार्ट वाले प्लाजा में। मेसमराइज ऑप्टिकल, अपनी नजर चेक करवाइए 416-335-0786
जी साहब, वेलकम बैक अगेन। एंड बात कर चलो हेयर मैक्स अल्टीमेट हेयरिंग सॉल्यूशन की। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। इनका कहना है कि वी डील इन वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स फॉर हेयरिंग एड्स एंड अदर असिस्टिव लिस्टिंग डिवाइसेस। इसके साथ साथ अगर आप या आपके घर में किसी के भी सुनने में कुछ कमी आ गई हो या आ रही हो, तो भाई एक दफ़ा आप फ्री, नो ऑब्लिगेशन कंप्लीट हेयरिंग टेस्ट, लाइक यू डोंट हैव टू पे अ पेनी, कंप्लीट हेयरिंग टेस्ट करके देंगे आपको। तो आप अपने कंप्लीट हेयरिंग टेस्ट के लिए आप हेयर मैक्स अल्टीमेट हेयरिंग सॉल्यूशन के पास जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। 861 जेन स्ट्रीट, जेन एंड एग्लिटन का इलाका है ये, जेन पार्क प्लाजा में। और दूसरी लोकेशन इनकी एरेंडेल स्टेशन एंड डंडास के कॉर्नर पर, जहां वेस्टडेल मॉल है, बस वेस्टडेल मॉल में इनको इनकी एक और लोकेशन है। तो हेयर मैक्स अल्टीमेट हेयरिंग सॉल्यूशन में पहुंच जाइए। फ़ोन नंबर मैं दे देता हूं आपको 416-792-8792 इनका फ़ोन नंबर है।
कानों के साथ साथ आंखें भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नज़र चेक कराना चाहते हैं तो मेसमराइज ऑप्टिकल का नाम याद रखिएगा। ये स्कारब्रो में शेपर्ड एंड मार्कम, शेपर्ड एंड मार्कम, वो जो हमारा शॉपर्स ड्रग मार्ट है उनके बिल्कुल साथ है। इब्राहिम यहाँ मौजूद होते हैं, बल्कि ग्लासेस के साथ साथ अगर आपके पाँव में तकलीफ रहती है तो इनके पास ऑर्थोपेडिक शूज़ भी मौजूद हैं। आई साइट चेक करने के लिए डॉक्टर ऑन साइट मौजूद है। ब्रांडेड ग्लासेस देनी है, सन ग्लासेस देनी है, आप रब्ता कीजिए मेसमराइज ऑप्टिकल 416-335-0786-335-0786। पाकिस्तान का राना सना हैं तो उनकी बेगम ने अक्वाम मुत्तहिदा से रजू कर लिया। आज मरियम नवाज शरीफ ने भी बयान दिया है कि आई इंटेंड टू डू द सेम, यानी मेरा भी ख्याल है कि मैं अक्वाम मुत्तहिदा से रजू करूं। बस साहब, अब हमारे घर के मामलात को तो अक्वाम मुत्तहिदा ने ही हल करना है। अमेरिका ने देखिए नया मामला सुनिएगा, कहते हैं एक तो चाइना के साथ जो समंदर है उसका भी मसला चल ही रहा है, क्योंकि अक्सर अमेरिका वहाँ पे रखवाली करने के लिए पहुँच जाता है, जिस पे चाइना को बहुत एतराज़ है। अभी अमेरिका ने कहा है कि खलीज अम्मान और यमन के जो इर्द गिर्द पानी है, اس پانی کے تحفظ کے لیے امریکہ نے ایک اتحادی فوج بنانے کا عندیہ دیا ہے. یہ امریکہ کے ایک سینئر فوجی جنرل نے کہا ہے کہ یمن کے ارد گرد جو سمندر ہے اس کی حفاظت کے لیے امریکہ ایک بین الاقوامی فوجی اتحاد قائم کرے گا. جنرل جوزف ڈینفورڈ ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم خلیجی خطے میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں اہم تجارتی گزرگاہیں ہیں. اب آپ امیجن کیجئے گا یہ یمن کے ارد گرد کا علاقہ ہے, یا ابھی ریسنٹلی ایران کے دو جہازوں کا بھی معاملہ اسی جگہ پہ ہوا ہے. اور جنرل ڈیفرٹ نے کہا کہ فی الحال امریکہ کے کافی ممالک سے بات چیت چل رہی ہے. اس پروجیکٹ کا نام ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول. کمانڈ اینڈ کنٹرول یعنی بحری جہاز امریکہ فراہم کرے گا مگر دوسرے ممالک جو ہیں وہ کشتیاں دیں گے. یعنی جو جو ملک اس پروگرام کا حصہ بننا چاہے گا, کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اتحادی فوج کا حصہ بننا چاہے گا, امریکہ اپنے جہاز دے گا بحری جہاز, مگر وہ ممالک جو اس کا حصہ بنیں گے وہ اپنی اپنی کشتیاں دیں گے جو کہ امریکہ کے جہازوں کے ارد گرد ان کی حفاظت کر سکیں گی. بہرحال اب آپ یہ امیجن کیجئے گا اس میں خلیج عمان ہے, متحدہ عرب امارات, یہ سارے عرب ممالک کے درمیان خلیج عمان کا آپ کو معلوم ہی ہے, اوپر خلیج فارس آ جاتی ہے, اپنا حرمز آ جاتی ہے, ایران کے بالکل ساتھ یہ علاقہ بنتا ہے, عمان ہے, متحدہ عرب امارات ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اب یہ منصوبہ کتنا بڑا ہوگا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کتنے ممالک اس میں شریک ہوتے ہیں. بہرحال بہت سے لوگوں نے سنا اس کی حامی بھی بھری ہے, بھری ہے کہ نہیں بھری ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آپ نئے حرمز اور باب المندب جو ہے فوجی اہمیت کے بحری راستے ہیں, سمندر سے خلیج بحیرہ احمر تک رسائی فراہم کرتے ہیں. اور یہ جو یہ باب المندب ہے یہاں سے بحری راستے کے ذریعے روزانہ 40 لاکھ بیرل تیل, یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاملہ کس کا تیل کا ہے. یہ جو آبنائے حرمز ہے اور خلیج عمان ہے یہ بڑے امپورٹنٹ راستے ہیں کیونکہ تیل کی ترسیل انہی راستوں سے ہوتی ہے. ابھی امریکہ نے ایران پر جون میں آبنائے حرم سے کچھ فاصلے پر دو تیل بردار ٹینکوں کو آبی بارودی سرنگ سے تباہ کرنے کا الزام لگایا تھا. ایران نے بہرحال اس کی تردید کی ہے. اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایرانی فوج نے امریکی ڈرون کو خلیج کے علاقے میں تباہ بھی کیا تھا. ایران اب یہ کہتا ہے کہ ڈرون نے ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی, امریکہ کو سیدھا سیدھا پیغام دیا ہے. اب امریکہ نے ایران کی تردید کی اور اپنے موقف کا اظہار کیا ہے کہ نہیں نہیں وہ ان کے اوپر نہیں ٹریول کر رہا تھا, وہ تو بین الاقوامی فضائی حدود میں ٹریول کر رہا تھا. صدر ٹرمپ نے آپ کو پتا ہے ذاتی طور پر ٹویٹر پر ایک پیغام بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور بہرحال یہ رفٹ چلی رہی ہے, آپ کے بھی نوٹس میں ہے. اب
بہانے سوچے جا رہے ہیں عارفہ جی ہر جگہ کے, کسی طرح ایران کو اور امریکہ کو انوالو کر دیا جائے.
نہیں, ناٹ انوالو کریں یا نہ کریں, میں آپ کو صرف اتنا کہتی ہوں کہ یہ پاکستان کے دو واقعات آپ کی نظر سے گزرے ہیں. یہ اگلی جنگ جو ہونی ہے نا یہ مڈل ایسٹ میں ہونی ہے. ابھی بھی مڈل ایسٹ تو اس وقت بھی جل رہا ہے, اس وقت بھی مڈل ایسٹ جل رہا ہے. تو اب یہ جو خلیج عمان ہے اس کو کنٹرول میں لینا ہے انہوں نے, مگر وقت کا فرعون ہے اور آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے. مگر یو نو ایوری کنٹری, میرا بیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ وائی یو آر اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ, ڈونلڈ ٹرمپ از پریزیڈنٹ آف امیریکا, سو واٹ ایور ہی از ڈوئنگ ٹو پلیز امیریکنز.
ایگزیکٹلی,
اگر اس نے کیلیفورنیا اس نے کوئلے کو اگر کیا ہے تو اس نے اپنے ملک میں, ابھی ریسنٹلی امریکہ میں جو جابس تھیں ان کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہائر ہوئے ہیں, ان امپلائمنٹ ریٹ کم گیا ہے, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ از پریزیڈنٹ آف امریکہ, ہی از ناٹ پریزیڈنٹ آف کینیڈا, ہی از ناٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان, ہی از دیئر ٹو لک آفٹر امریکنز.
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ پہلے سے ہی بیان تھا کہ آئی ایم ناٹ دا ورلڈ پریزیڈنٹ, آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ
سٹیٹس,
جو کچھ بھی کروں گا مفاد کروں گا. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسے لیڈر آ جائیں جو پاکستان کے مفاد کے لیے کام کریں.
صاحب مگر ماجد بھائی قوم بھی تو آگے سے ویسی ہے نا, قوم بھی تو ویسی ہے نا. ابھی تو ابھی اب زرداری صاحب نے بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے اقوام متحدہ پہ جانا ہے. یہ کون سے لیڈرز ہیں جو اپنی ہر پرابلم کو اقوام متحدہ پہ لے کے جاتے ہیں؟ تو اچھا ہے پھر ایک امریکہ کا جہاز پاکستان کے بارڈر پہ بھی جا کے کھڑا ہو جانا چاہیے.
آج جب میں نے یہ نیوز پڑھی تھی نا تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا, اس وقت میں نے تبصرہ بھی کیا تھا اس پہ کہ وائٹ ہاؤس نے ایک انتہائی مختصر بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس پہ وزیر اعظم پاکستان سے عمران خان سے ملیں گے. یہ تو اتنی گھٹیا بات لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے یہ, کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ کتنے پریزیڈنٹس وہاں پر آتے ہیں یا وزیر اعظم آتے ہیں امریکہ میں ملنے کے لیے, ہر ایک کی ہیڈ لائن سنی ہوتی. یہ تو ہمیشہ بتایا جاتا ہے وہ تو ہی از اے ویری بزی مین, مگر پاکستان کے یہ اس وزیر اعظم کو انہوں نے انوائٹ کر کے بلایا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لائن میں کھڑے ہوئے کہ بھائی ہمیں بلا ہمیں
انوائٹ کر کے بلایا ہے, مگر اٹس اے پریشر ٹیکٹکس نا. آپ دیکھیے جو آپ فیکٹ کی بات ہے, آپ سینیریوز کو دیکھیں. انڈیا کو پریشرائز کیا جاتا ہے وہ رپورٹ ایشو کرنے کے ہیومن رائٹس کی, مائک پومپیو وہاں جاتے ہیں, وہاں جانے کے بعد انڈیا کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا, افغانستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے,